महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने इस प्रोजेक्ट पर कब काम शुरू किया और क्लाइमेट रेजिलियंस यानी जलवायु सहन क्षमता के लिए महिलाओं को इन प्रयासों के बीच में होना क्यों जरूरी है?
महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने जलवायु परिवर्तन के लिए 2015 से काम करना शुरू किया, और हम तो एक संस्था है जो हमेशा से असंगठित क्षेत्र की श्रमजीवी गरीब बहनों के साथ काम करते रहे हैं। तो हम हमेशा मानते हैं कि बहनों के साथ काम करना ज्यादा फलदायी है, तीन चार वजह से। एक तो असंगठित क्षेत्र जो इंडिया और जो ग्लोबल साउथ में बहुत ज्यादा लोग उससे जिससे रोजी रोजगार प्राप्त करते हैं, उसमें बहनों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। वो बहुत काम करती हैं लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है कामदार के तौर पे, वो एक बड़ी बात है। दूसरी, उनके अपने प्रश्न भाइयों से थोड़े हटके भी होते हैं जो सिर्फ बहन होने की वजह से होते हैं समाज में। और तीसरा, हम ये भी मानते हैं कि जब बहनों के साथ काम करेंगे तो जो उनकी कमाई या आमदनी जब बढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को ज्यादा जाती है, जो जरूरी नहीं है कि भाई कमाएंगे तो सब कुछ परिवार के लिए डालेंगे, वो जरूरी नहीं है। वो जुआ भी खेल सकते हैं, दारू भी पी सकते हैं। तो ये सोच थी एक। और जलवायु परिवर्तन के लिए खास तौर से क्योंकि ज्यादा असर बहनों पे होगी, क्योंकि उनको घर की भी जिम्मेदारी है और बाहर भी उनको संभालना है, वो कामदार भी हैं, तो उनके ऊपर स्पेसिफिक ज्यादा असर होगी। और मुझे लगता था कि ये पूरी जो जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा चला था उसमें बहनों का इतना ज्यादा कोई आवाज नहीं थी। तो वैसे भी हम बहनों के लिए काम करते थे, तो जलवायु परिवर्तन भी हमने बहनों के लिए ही फोकस किया।
कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकती हैं जिनमें क्लाइमेट रेजिलियंस के आप कुछ एरियाज में काम करते हैं, ट्रेन करते हैं, कम्युनिटीज को हेल्प करते हैं, तो वो कौन से एरियाज हैं क्लाइमेट के?
चार पांच एरियाज हैं, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट तो सिर्फ एक जरिया होता है हमारे काम को आगे बढ़ाने का, हम एक्चुअली प्रोग्राम्स करते हैं, तो वो प्रोग्राम स्थायी तौर पे रहते हैं और वो करने के लिए हम प्रोजेक्ट के थ्रू पैसा लाते हैं। तो हम लोग स्थायी तौर पे, अभी जब हमने काम शुरू किया था तो हम लोग वैसे तो एनर्जी के लिए काफी काम करते थे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म, जैसे मैं कहती हूँ स्ट्रेसेस, जो जिसके लिए मेरे पास हिंदी में अभी कोई शब्द नहीं है, वो था कि एक गर्मी का बढ़ना, दूसरा था पानी की स्कैर्सिटी, मतलब पानी बहुत पेचीदा मुद्दा है, कम होता जा रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना। तीसरा था कि बहुत ही ज्यादा फ्लडिंग हो रही है, अर्बन शहरी विस्तारों में बहुत ज्यादा बारिश की, थोड़े बारिश में भी काफी पानी भर जाता है, कई बार बहुत नुकसान होता है, तो उस मुद्दे पे काम किया। पांचवा मुद्दा था कि अभी बहुत तेजी से पानी विस्तारों में, शहरी विस्तारों में खास तौर से पानी के से संबंधित रोग बहुत बढ़ने वाले हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, खास तौर से जो विश्व का दक्षिण दक्षिण विभाग है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, उसमें पानी के से रिलेटेड बहुत रोग बढ़ने वाले हैं। तो और क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का भराव भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि बारिश अनियमित होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो उस मुद्दे पे काम किया। और उसके बाद अभी जो जो दक्षिण विश्व के दक्षिण भाग में जहाँ पे हम लोग सब बसते हैं, जो जो मुद्दे उभर के आते हैं, जैसे कि हवा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी उभर के आ रहा है हमारे शहरों में, तो उसके ऊपर भी काम की चालू हुआ है। और जो बहनों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस मिले या उनका जो जोखिम है वो ट्रांसफर हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग जो जैसे गर्मी के लिए इंश्योरेंस या बीमा का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी हम लोगों ने काम अभी शुरू किया है।
अर्बन एरियाज में विमेन ग्रुप्स को अप्रोच करने में, उन्हें ट्रेन करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आप इन समस्याओं से कैसे डील करते हैं?
तो पहली तो बात यह है कि जलवायु परिवर्तन ही सिर्फ, ना सिर्फ गरीब श्रमजीवी बहनों को, जो आम तौर से जो सामान्य लोग होते हैं उनको, उनके बारे में वो बात बहुत सुनते हैं जलवायु परिवर्तन की, लेकिन ज्यादा कुछ समझ नहीं है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, या साइंटिफिक कोई समझ नहीं है। तो आप गरीब बहनों की तो बात ही जाने दें, और ऑब्वियसली क्योंकि बहनें गरीब हैं तो उनके जीवन में हमेशा वो मुद्दे प्राधान्य रखते हैं जो उनके जीवन को ज्यादातर प्रभावित करते हैं, जैसे कि कल मैं पानी कैसे लाऊंगी, या बच्चे की फीस कैसे भरूंगी, या खाना कहाँ से आएगा, या मेरी रोजी कहाँ से है। तो सबसे बड़ा जो हमको चैलेंज था वो ये था कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे जो शायद उनके लिए बहुत आगे नहीं है जीवन में, उसको हम कैसे आगे लाएं, वो सबसे बड़ी चैलेंज थी। तो उसमें हमको सहायता ये रही कि हम लोग सिर्फ क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे काम नहीं करते हैं, हम लोग एक्चुअली ऐसी संस्था है जो उनके हैबिटेट, तो हमारा जो मिशन है वो ये है कि उनके आवास, उनके काम और उनके जो पर्यावरण का हम सुधार करें। तो काफी सारे हम सालों से उनके साथ काम करते थे, उनको पानी दिलवाया है, उनको शौचालय दिलवाए हैं, उनके आवास बनाए हैं, उसके लिए लोन दिलवाई है, तो एक बहुत सालों का पुराना संबंध था। तो जब हम क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा लेके गए जो उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है अभी, तो वो सिर्फ इसलिए सुनने बैठे कि हम लोग कह रहे थे, क्योंकि एक पुराना संबंध था और बहुत ज्यादा विश्वास था, तो वो सुनने इसलिए बैठे कि हम लोग कह रहे थे। और उसमें सिर्फ एक और दूसरा मुद्दा जो काम में आया वो ये था कि जब उन्हें कहा गया कि शायद आपके बच्चों का जीवन, वो बहुत क्लियर थे कि हमें हमारा जो जीवन है वैसा हमारे बच्चे नहीं जीना चाहिए, मतलब हमारे बच्चों का जीवन हमारी परिस्थिति से अच्छा होना चाहिए। तो जब ये बात बाहर निकली कि क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद उनके बच्चों का जीवन उनसे भी बुरा होगा, तो एकदम से फिर वो समझे और वो काम करने के लिए उनको इंटरेस्ट आया और उसमें काफी एंगेज हुए।
अर्बन पुअर में आपने महिलाओं को जो ट्रेन किया है, साउथ एशिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडिया में किया है, देशों में किस तरह की अलग अलग समस्याएं हैं या क्या समानताएं हैं, किस तरह का आपका ये अलग अलग देशों में अलग अलग समुदायों से जो इंटरेक्शन रहा है उसका क्या अनुभव रहा है?
हम लोगों ने जब नेपाल बांग्लादेश में काम किया तो वो हमने डायरेक्टली नहीं किया था, वहाँ संस्थाएं ऑलरेडी काम करती हैं, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की थी तो उनके थ्रू, लेकिन हमने काफी वहाँ पे विजिट्स किए क्योंकि उनको पहले सिखाया और फिर उनके समुदायों के साथ भी थोड़ा बहुत बातचीत किए, लेकिन जो एक्चुअल काम किया वो उन्होंने किया ग्राउंड पे। जो समानताएं थी वो ये थी कि हर जगह बहने पिछड़ी हुई थी और भी ज्यादा, तो उनके साथ काम करना और भी मुश्किल था, और बांग्लादेश जैसे शहर में बहनों को बाहर निकलना जहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, इंक्रीजिंगली मुश्किल हो रहा है, और हमारे काम का एक मुद्दा था कि आप बाहर निकल के सरकारों के साथ मिलो और बातचीत करो, तो वो समानताएं तो हर जगह थी। लेकिन एक दो चीज जो बहुत ही असमान थी बांग्लादेश, और असमान तो नहीं कहूंगी लेकिन अलग जरूर कहूंगी क्योंकि इंडिया के अनुभव से, बांग्लादेश और नेपाल में हमको डेटा और फिगर्स ये बता रहे हैं कि सारे जो देश हैं वो बहुत हेविली अर्बनाइज हो रहे हैं, और ग्लोबल साउथ साथ खास तौर से लगभग 40% उसकी जनता शहरों में रहने वाली है आने वाले 20-30 साल के अंदर, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल के अंदर ऐसी कोई भी पहचान नहीं थी। एक तो बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ढाका में था, छोटे छोटे शहर, इंडिया की तरह इतना अर्बनाइजेशन की पहचान नहीं थी कहीं पे भी, हालांकि इंडिया में भी सिर्फ 2005 से ही हुई है, और नेपाल में तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि तो या काठमांडू उनका सबसे बड़ा शहर है और फिर 2-3 छोटी छोटी म्युनिसिपालिटी है, तो अभी भी जो गरीबी की पहचान है वो ज्यादातर वो लोग रूरल ही समझते हैं, तो उनके यहाँ कोई अर्बनाइजेशन को लेकर कोई नीतियां नहीं है, कोई सरकार के कार्यक्रम नहीं है, जो कि इंडिया में भी बहुत देरी से आए, लेकिन 2005 से इंडिया ने काफी शुरू कर दिया है और इंडिया में अभी अर्बन नीतियां बनने लगी है जो कि वहां पे बिल्कुल नहीं थी, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि जबकि हम बोल रहे हैं कि शहरीकरण बहुत ही बड़ा मुद्दा होने वाले हैं आने वाले सालों में। और दूसरा जो मेरे ध्यान में आया कि जो ज्यादातर संस्थाएं महिलाओं को, क्योंकि हमने ऐसे पार्टनर्स को चुना था जो महिलाओं के साथ काम करते थे, तो महिलाओं के मुद्दों पे काम करती थी, तो वो मुद्दे सीमित रह जाते थे डोमेस्टिक वायलेंस पे या फिर सेफ्टी इश्यूज ऑफ विमेन, यानी कि बहनों की सुरक्षा या बहनों के घरों में जो वायलेंस होता है इनके खिलाफ काम करें। और मैं ये जरूर नहीं कहूंगी कि वो मुद्दे आज भी, उनकी जरूरत नहीं है उन मुद्दों पे काम करने की, वो मुद्दे आज भी बहुत ही जरूरी है काम करने के लिए। लेकिन महिला हाउसिंग ट्रस्ट जैसी कोई संस्था नहीं थी जो बात करे बहनों के पब्लिक पार्टिसिपेशन की, जो बात करे शहरों के अंदर बहनें बाहर निकल के सरकार के साथ बातचीत करने जाए, तो वैसा कोई, जब बहनों की बात आती हो तो वो ही ट्रेडिशनल मुद्दे होते हैं कि उनके घरों में जो हिंसा हो रही है उनके ऊपर या उनकी सुरक्षा का मामले। लेकिन जो सरकारी वहीवट को ज्यादा सक्षम बनाना, बाहर निकल के पब्लिक में पार्टिसिपेट करना, वो वाली कोई बात नहीं थी बहनों की इन संस्थाओं में।
आपका जो फोकस है, जो मुख्य रूप से प्रयास है, वो चार मेन एरियाज पर है। हीट वेव्स है, गर्मी, ताप लहरें हैं, जल भराव की समस्या आपने बताया, जल की किल्लत भी है और फिर उससे होने वाले रोग भी हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं उनका भी इस पर काफी ध्यान रहता है। और 2019 में आपको यूएन जो जलवायु परिवर्तन संस्था है उसकी ओर से ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड भी मिला था। उस अनुभव के बारे में बताइए, वो किस तरह से हुआ और इस मंच पर आना आपके लिए कैसा अनुभव रहा?
वो तो इस तरीके से हुआ कि 2015 में यूएसएआईडी ने ग्लोबल रेजिलियंस पार्टनरशिप नामक एक पार्टनरशिप थी जो ग्लोबल थी, उनके थ्रू एक वर्ल्ड लेवल चैलेंज चलाया जिसमें उन्होंने एप्लीकेशंस मंगाए, तो करीब 500 संस्थाओं ने एप्लीकेशंस किए थे और हमने भी किए, और उन 500 में से 8 को उन्होंने चुना आगे फंड करने के लिए और काम करने के लिए। तो उन्होंने काफी हमारे काम को बाहर फैलाया उसके बारे में। हम लोग बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया वगैरह का यूज नहीं कर रहे थे और फिर यूनाइटेड नेशंस के साथ भी उनके संपर्क काफी अच्छे थे, तो जब यूनाइटेड नेशंस ये अवार्ड देना चाह रही थी तो उन्होंने ग्लोबल रेजिलियंस पार्टनरशिप से नॉमिनेशंस मंगवाए, तो जो भी संस्थाओं के साथ उनके अनुभव अच्छे रहे उनको नॉमिनेट किया था। और ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशंस ने और जगहों से भी नॉमिनेशंस मंगाए होंगे आई एम श्योर, लेकिन फिर जब उनकी जूरी बैठी तो फिर हमको चुना गया, सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फंड के द्वारा, और उसके बाद UNFCCC में हमने अप्लाई किया तो उन्होंने भी हमको चुना। तो वो एक बहुत ही हमारे लिए बहुत, जैसे कहा कि हमारे काम के लिए हमको गर्व हुआ। तब तक हम लोग अपने आप को शायद बहुत जमीनी स्तर पे, अभी भी जमीनी स्तर पे ही हैं, लेकिन हमारा काम इतना सराहनीय है शायद हमको ही नहीं मालूम था, तो पहली बार बहुत ज्यादा गर्व हुआ। और डेफिनेटली यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बहुत पहचान बाहर बढ़ी है, बहुत लोग हैं जो हमारे अनुभव उनके साथ लेना चाहते हैं, बहुत पार्टनरशिप्स बढ़ी हैं हमारी इंटरनेशनल और नेशनल संस्थाओं के साथ।
जो अवार्ड था 2019 में था, उसके बाद जो पिछले 2 साल रहे हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं हर तरीके से COVID-19 महामारी की वजह से। आपके जो अभी तक प्रयास रहे हैं उसमें महिलाओं के पास जाना, उनको ट्रेन करना, लेकिन इसमें कोविड की वजह से एक सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य तरह के एहतियाती उपाय भी हैं, तो काम कितना मुश्किल हुआ, क्या उस रफ्तार से बढ़ पाया जिस तरीके से एक उम्मीद थी, या फिर आने वाले दिनों में किस तरह से आप इसको दोबारा से पटरी पर लाना चाहते हैं?
पटरी पर तो आ ही गया है, काम तो काफी इफेक्ट हुआ क्योंकि उस वक्त क्लाइमेट चेंज की बात तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन हम डेफिनेटली रेजिलियंस की बात कर रहे थे कोविड के समय, क्योंकि बहनों को कोविड में टिकना और उससे आगे बढ़ना वही तो रेजिलियंस है। वो शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से उस वक्त उतना नहीं हुआ था, लेकिन हम वो बहुत ज्यादा कर पाए क्योंकि बहनों को रेजिलियंस के बारे में हमने बहुत एजुकेट किया था, तो कोविड में काफी हमारी रीच बढ़ी। और उसके बाद अभी तो काम पटरी पे आने लगा है, हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन पे भी काम शुरू किया और अभी ये गर्मी और जो ज्यादा बारिश की समस्या होने वाली है उसके लिए हम लोग गरीब बहनों के लिए बीमे का भी डिजाइन शुरू किए हैं, तो काफी काम तो बढ़ चुका है, तो हम अभी पीछे नहीं हटने वाले इन मुद्दों से।